नमस्ते सभी को। परिचय में एक बात छूट गई थी, वो आवश्यक है। और वो ये है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र रह चुका हूँ। हालांकि एक साल ही विज्ञान के उसमें, उस समय बीएससी का टीडीएस कोर्स होता था। तो यहीं से फर्स्ट ईयर करने के बाद ब्रोचा हॉस्टल में मैं रहा हूँ और खूब अच्छे से परिचित हूँ बीएचयू से। और गंगा जी, चूँकि परिचय की बात चल रही है, गंगा जी का केवल मैंने बोटिंग नहीं की है, कम से कम 3 बार साक्षात दर्शन किए हैं। शी इज़ अ रियल लिविंग गॉडेस, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और सच में उनके अंदर वो शक्ति है कि वो मनुष्य को शुद्ध कर सकती है। शुद्धि ही मुक्ति है। क्योंकि आपने ये बात कही तो वहीं से हम प्रारंभ करें, क्योंकि सब लोग मोक्ष के लिए जा रहे हैं आज का कहाँ। वास्तव में मुक्ति क्या है? हम सब के अंदर एक दिव्य तत्व है और वो उस हीरे की तरह से है जो अनेकों मिट्टी की परतों में लिपटा हुआ है। और यदि उससे मिट्टी हटा दी जाए, जैसे स्वर्ण का कोई कण हो और उसके ऊपर में धूल मिट्टी ये सब हटा दी जाए, तो उसका शुद्ध स्वरूप आ जाएगा। तो वास्तव में मुक्ति क्या है? अपने ही अंदर जो दिव्यता है, जो अज्ञान की परत से ढकी हुई है। बनारस यहीं पर मोड़ पर लगाए ना, विद्याम अमृतम अश्नुते, अविद्याम मृत्युम तीर्थवा, उसका पहला भाग है विद्याम अमृतम अश्नुते। तो विद्या क्या है? वो जो हमें स्वयं से परिचय करा देती कि हम वास्तव में कौन है। और जिस दिन पता चल जाता है तो वो स्वतः ही मुक्ति हो जाती। तो वो शुद्धि एक प्रकार से मुक्ति का ही साधन है। और ये जो शुद्धि जिसकी बात हो रही है, वो मॉरल एथिकल शुद्धि की बात नहीं हो रही है। मॉरल एथिकल शुद्धि में हम अज्ञान से मुक्त नहीं होते हैं, हम केवल अपने ऊपर एक कठोर परत की जगह एक हल्की परत डाल देते हैं, बस इतना है कि भाई ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना बुरा है, और अच्छे का मार्ग चुनते हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो हमको मुक्त नहीं करता है। क्योंकि यदि वही मुक्ति होती तो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ये उपदेश नहीं दिया होता कि धनुष उठा, संधान कर और तीर चला। अर्जुन की तो समस्या यही थी कि मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, साधु संन्यासी बन जाऊँ, मैं भी चला जाऊँ, फिर जब महाकुंभ होगा मैं आया करूँगा, लोग कहेंगे अर्जुन की जय जयकार, या केशव मुझे क्या करने को कह रहे हो। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है गीता का प्रसंग। गीता कहाँ दी जा रही है? किसी आश्रम में नहीं दी जा रही है, किसी हर्मिटेज में नहीं दी जा रही, युद्ध भूमि में दी जा रही है। मुक्ति वह मुक्ति है जो अनकंडीशनल है। वास्तव में देखा जाए तो अगर हम किसी भी बाहरी अवस्था से बद्ध हैं तो हम मुक्त नहीं है। यानी अगर हमको मुक्ति के लिए किसी जगह विशेष जाकर के जीवन से कट करके एक प्रकार के वस्त्र पहनकर यदि वह मुक्ति है तो मुक्ति नहीं है। ये पैराडॉक्स है कि नहीं, लॉजिकल। मुक्ति तो वह है कि हम जीवन में रहें, सबसे जुड़े हैं, लेकिन मुक्त है। बद्धता तो बाहरी नहीं होती, अंदर की बद्धता होती है। तो यहीं से हम प्रारंभ करें 2 प्रश्नों के साथ, और इसका उत्तर आप सभी देंगे, क्योंकि आप सबको पता है। किसी वृक्ष जो उगता है तो उसको कौन निर्धारित करता है कि उसमें कैसा बीज है? इज इट ट्रू और नॉट? जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष उगेगा, है ना? तो यदि सृष्टि का आदि स्रोत दिव्य है तो हम सबके अंदर कौन सा बीज बड़ा हुआ है दिव्यता का? तो ये विकास के द्वारा अल्टीमेटली ये बीज किस वृक्ष में फलित होना चाहिए? दिव्य, लॉजिकल, कुछ गलत तो नहीं है। अब समस्या यहां आती है कि लेकिन अभी तो हमें केवल दिव्यता एक हमारे लिए एक भाव है, विश्वास है, मान्यता है भी कि नहीं है, ये सारे हमारे मस्तिष्क में जाल जंजाल लगे हुए हैं। लेकिन सृष्टि का एक तो आदि स्रोत होगा और वो एक ही होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आपका कोई ओरिजिन और है, आपका ओरिजिन कोई और है, हम सबका ओरिजिनल स्रोत तो एक ही होगा। और यदि वो स्रोत दिव्य है तो हम सबके जीवन की वस्तुतः नियति दिव्यता है। तो जगह जगह हम लोग एक नारा देखते हैं, बड़ा सुंदर नारा है, मोदी जी ने दिया है, दिव्य काशी भव्य काशी। तो हम सबके लिए एक नारा रहेगा, दिव्य जीवन भव्य जीवन। क्यों? क्योंकि ये हमारी नियति है, ये लॉजिकल नियति है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, विकास क्रम में हम लोग मानते हैं कि नहीं मानते इवोल्यूशन की, इसमें भी कोई डाउट है? हम कैलिफोर्निया की तरह तो नहीं है कि नहीं नहीं इवोल्यूशन नहीं होता है, इवोल्यूशन को मानते हैं ना। अच्छा, यदि इवोल्यूशन सत्य है तो जो भी ऊर्जा जो भी शक्ति एक मिट्टी के ढेले को मनुष्य तक ले आई है, क्या वो मनुष्य पे रुक जाएगी? नहीं ना, लॉजिकल है। वो भी ऐसे अपूर्ण, पूर्णता की प्यास हम सबको है लेकिन है कितने अपूर्ण हम सब जानते हैं। तो ये जो नेक्स्ट लॉजिकल चीज है वो ये है कि मनुष्य, इसको शेरविंद के कई महावाक्यों में से एक है, वो ये कि मनुष्य एक मध्यवर्ती सत्ता है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। इस पर विचार करें तो मस्तिष्क की सारे आजकल जो कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग परखच्चे उड़ जाते हैं। ये मेरा एक प्रश्न होता था, ये बाहरी परिचय वगैरह तो एक अलग चीज होती है, यही जब मैं FMC गया तो मेरे दिमाग में यही एक प्रश्न उठता था कि ये मैन क्या एंड है इस सृष्टि का, ये तो ऐसा लगता है कि इंटरवेल में पिक्चर समाप्त हो गई। यदि इफ मैन इज द एंड, दी एंड कहते हैं ना, अब मैन के आगे क्या है, मोक्ष प्राप्त कर लो कहीं चले जाओ, तो अजीब सा लगता नहीं है कुछ की क्या बना दिया, बनाने के बाद अच्छा दी एंड आपने, अजीब सा नहीं लगता? कितनी सारी प्यास है, कितनी सारी हमारे अंदर चाह है, कितने सारे अभीपसाएं हैं, कितनी आशाएं हैं, कितने स्वप्न हैं, और वो स्वप्न केवल क्या भौतिक जगत के हैं? पूर्णता की प्यास नहीं है किसी के अंदर? पूर्णता से क्या अर्थ है? बड़ा सरल सा अर्थ है, प्रेम हो तो सुंदर हो, जीवन हो तो सुंदर हो, ज्ञान हो तो परिपूर्ण हो, उसमें कोई एरर का स्कोप ना हो, शांति हो तो ऐसी हो कि युद्ध क्षेत्र में भी शांति हो, भीड़भाड़ में भी शांति हो, आनंद ऐसा हो कि जिसके ऊपर किसी दुख की छाया ना पड़ी हो। इज इट नॉट ट्रू? है कि नहीं है? तो क्या स्वप्न लेके मर जाना यही मनुष्य की नियति है? अजीब सा लगता है ना, विधाता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो मेरे अंदर ये बहुत प्रश्न आता था, मुझे लगता है कि कई युवाओं के अंदर ये प्रश्न होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा, अगर ये प्रश्न नहीं है तो समथिंग इज अमिस इन एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन वो नहीं है जो हमारी केवल भूख प्यास शांत कर देती उत्तर को दे करके। कई बार ये भी समस्या होती है गूगल जनरेशन की कि उत्तर बहुत सारे हैं, प्रश्न क्या है? किसी ने पढ़ी है हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी? नहीं सुनी? बड़ी अद्भुत किताब है। तो उसमें कुछ लोगों ने कुछ कोई प्रश्न है उसको लेकर अनुसंधान कर रहे हैं, तो जनरेशन बीत जाते हैं, बाद में उनको अचानक एक उत्तर मिलता है उसका, और उत्तर मिलता है 42। अब उत्तर आ गया, कह रहे प्रश्न क्या था? प्रश्न भूल गए, कैलकुलेशन करते करते जनरेशन लास्ट में उत्तर आया 42, प्रश्न क्या था? तो विद्या तो वो है जो हमको उन प्रश्नों को उठाना सिखाती है जो हमारी किताबों के फ्रेमवर्क में नहीं है, जिनके उत्तर नहीं है। सारे उत्तर किताबों में नहीं होते, इसी को बड़े सुंदर ढंग से श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, शब्द ब्रह्मति वर्तते, शब्द वाणी इन सब की सीमाएं हैं, इनके परे भी कुछ उत्तर हैं, वो हमारे अनुभव की भूमि पर मिलते हैं। यहाँ अनुभव में उस अनुभव की बात केवल नहीं कर रहा हूं कि जीवन आप बड़े हुए बाल सुखाए तो आपको अनुभव हुआ, एक ऐसी भूमि पर जहां पे विचार तर्क भावनाएं भी पहुंच नहीं पाती, और ये अनुभव है जिस जैसे एक बात हो रही थी श्री कृष्ण का वासुदेवम सर्वमिति, एक अनुभव है। तो एक भूमि है जो हमारे अनुभव की भूमि है, उसके परे भी और भूमि है जो अनुभव के भी परे चली जाती है। तो मनुष्य एक मध्यवर्ती सत्ता है, उसकी सीमाएं हैं। लेकिन आपने देखा है कि जितनी सीमाएं मनुष्य की बनाई जाती हैं, मनुष्य के अंदर एक स्वाभाविक वृत्ति क्या होती है? बोल दो, फ्रीली बोल दो, किसी का कोई अटेंडेंस नहीं ली जा रही है। सीमाओं का अतिक्रमण करने की होती है कि नहीं होती है? एक स्वाभाविक वृत्ति होती है, ये मनुष्य के अंदर है। पता है पशुओं में ये नहीं होती है। पशु अपने, इवन जो सिंह है, अपनी सीमा के अंदर रहता है। और अगर आप उसकी सीमा में नहीं जाओगे, सांप इतना भयंकर सीमाओं में रहता है, अगर आप उसका अतिक्रमण नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य के अंदर कोई प्यास है जो सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहती है, और वो ऐसी प्यास है जो कितने भी अतिक्रमण कर ले तब तक संतुष्ट नहीं हो जाती जब तक वो चेतना की किसी अंतिम भूमि तक नहीं पहुंचती है। उस अंतिम भूमि को ही सत्य कहा गया है। सत्य वो नहीं है जैसे हमारा सत्य तुम्हारा सच, वो तो सबका अपना अपना सच होता है। एक लीगल सच होता है, एक भावनात्मक सच होता है, एक बुद्धि का सच होता है, एक भौतिक सत्य होता है, होता है ना ये सब। लेकिन कोई सत्य क्या ऐसी भूमि है जहां वो नहीं बदलता, जहां वो स्थिर है? कोई स्थिर भूमि जहां पहुंच के सिक्योर फील करते ओके आई हैव फाउंड इट, उस भूमि को सत्य कहा गया। जो एक लास्ट डिस्कवरी, उसको आप ईश्वर कह लें, भगवान, क्योंकि वो उसके आगे वो दिखती नहीं है। जो कुछ भी होता है उसके अंदर, आप कहेंगे कि कैसे, जैसे आप सिनेमा देख रहे हैं तो आपकी दो परिस्थितियां होती हैं, अवस्थाएं, एक जो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक जो आप अनइन्वॉल्व होकर देखते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में आप तो आप ही हैं, चाहे आपके अंदर बाहर से देखा जाए तो शोभ उत्पन्न हो रहा है और दूसरी दृष्टि से आप चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसी भूमि है जो अडिग है, जो जो किसी भी अवस्था में बदलती नहीं है। जो बदल जाए वो वस्तुतः सत्य नहीं होता, होता है एक टेम्पररी सत्य होता है। टेम्पररी सत्य से सबका परिचय है ना, कल कुछ भावनाएं थी आज नहीं है, सुबह कुछ विचार थे मैं ऐसा करूंगा, शाम तक वो विचार कहीं और चले जाते हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है, पूरे मन से लिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जितना डिक्लेयर करते हैं उतना ही निश्चित मानो कि नहीं पालन होगा, है ना। जो चीजें जो करने वाले होते हैं बहुत डिक्लेयर नहीं करते हैं, ढोल नगाड़ा नहीं पीटना, हाँ ये बहुत ही एक तो ये सच अलग है, इसको कहा गया टेम्पररी सच। इनका औचित्य है, ये नहीं कि औचित्य नहीं है, किंतु एक ऐसा सत्य है जो नहीं बदलता। तो एक हो गया टेम्पररी सत्य झिलमिल वाला, एक हो गया शाश्वत सत्य, जैसे सूर्य शाश्वत है और पानी में झिलमिल हो रहा है, वो दोनों, उसके परे भी कोई सत्य है क्या? अभी उसको एक प्रश्न के रूप में रहने दे। श्रीमद् भगवद गीता कहती हाँ, तीन पुरुषों की बात करती, पर वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो हम लोग वापस वहां पे आ जाएं कि जो हमारे अंदर जो बीज है उसको प्रस्फुटित होना है, और इस प्रस्फुटन में, इस विकास में क्या समाज, क्या शिक्षा हमारी सहायता कर सकती है? उत्तर होना चाहिए हाँ, यही पर्पस है। आपने देखा है दो प्रकार के लोगों से मिलना होता है, एक तीसरे श्रेणी को छोड़ दें जो मिलना ना मिलना बराबर है, एक जिनको मिलके थोड़ी देर में आपको लगता है उफ माथा पक गया, चट गया, या बड़े निराश होकर आप लौटते हैं, जो हमेशा आपको प्रलय आने वाली है क्यों? क्योंकि उनका इंडाइजेशन चल रहा है तो उनको प्रलय ही लगती है सारी दुनिया में, क्योंकि उनके व्यक्तिगत स्तर पर प्रलय आने वाली है, डूम्सडे प्रोफेसी करने वाले लोग। आप थोड़ी देर मिलके आएंगे ना, आपको लगेगा हे भगवान सच में सब बहुत बुरा है। जैसे भी कुंभ की न्यूज आई थी, सच में सब बहुत बुरा होने वाला है, अरे इतने लोग मर गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं कहा भैया ऐसे देखो, इतने करोड़ों करोड़ों लोग जा रहे हैं, और सच में मुझे तो बनारस में भी, आपको बता रहा हूं ये देखने की दृष्टि है, अभी मैं इतनी भीड़ लोगों ने मुझसे इकारे बड़ी भीड़ है। मैंने कहा मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, इस भीड़ में कोई चिल्ल पौं चीख पुकार कुछ भी नहीं है, मुझे आपकी वो फ्रेज याद आ रही थी जो शेयर इन लैटिन सॉल्विट और एम्बुलेंडो, चलते रहो सब चरेवेती चरेवेती चले जा रहे, कहां जा रहे, दशाश्वमेध घाट जा रहे, कोई समस्या नहीं, भीड़ है लेकिन समस्या नहीं है, क्योंकि सब एक गंतव्य पे जा रहे हैं। देखिए कितनी यहाँ पे किसी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, मतलब वाहनों की व्यवस्था की जरूरत है, इट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो एक प्रकार के लोग होते हैं जिनसे आप मिल के आते हैं तो लगता है उफ, और दूसरे जो होते हैं जो आपको आशा से भर देते हैं। तो शिक्षा में क्या होनी चाहिए, आशा की निराशा बस, और सबसे बड़ी आशा क्या होती है, पैसा कमाना। ये अजीब लगता है सुन के, ही खुद को ही लगता है कि हम बस पैसा कमाने की मशीन है। सबसे बड़ी आशा ये है कि हमारे अंदर दिव्यता का बीज है, और वास्तव में वही भव्यता भी है। जब वो बीज पूरी तरह प्रस्फुटित होने लगता है, जैसे जैसे वैसे वैसे हमारे अंदर, आप सोचिए, आप एक क्षण के लिए बस सोचिए, इसको आप एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के रूप में ले लीजिए, और वास्तव में जीवन की एक घटना पर भी आधारित है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कोई बहुत वर्षों से एक महिला थी, महिला क्या लड़की थी, आप लोगों की उम्र की रही होगी, वो बहुत डिप्रेशन से गुजर रही थी, किसी ने मुझसे मिलवाया, तो मैं मनोचिकित्सक भी हूँ, तो मैंने कहा ईश्वर विश्वास करती हो, बोली हाँ, किस में, कृष्ण में, तो मैंने कहा देखो तुम उनको अपना मित्र समझ सकती हो। अब देखिए ये भारतवर्ष में सनातन धर्म कितनी अद्भुत बात है, सनातन धर्म में भगवान को हम मित्र भी रूप में ले सकते हैं, वो केवल जज नहीं है ऊपर बैठ के हमारा पाप पुण्य का निर्धारण कर रहे हो, वो मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, प्रियतम हैं, माता हैं, पिता हैं, क्या नहीं है। तो बोली हाँ, मैंने कहा बस आज से मित्र के रूप में उनको लेना सब कुछ। अब मित्र के साथ क्या होता है, आप कैसा व्यवहार करते हो, कुछ छिपाते हो मित्र से, आप सब कह देते हो। वो कुछ ही दिनों में, कुछ दिनों क्या, वो कहती है उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। अब ये देखिए, ये एक आशा जो अल्टीमेट हमारे अंदर क्या है उसका दीप, कई बार लोग, मैं तो मतलब जिसको कहते हैं ना कंपल्सरी ऑप्टिमिस्ट हूं, कई लोग कहते सब अच्छा होगा, सब उत्तम होगा, कंपल्सरी ऑप्टिमिस्ट, तो भाई पूछता है इसका आधार क्या है, मनुष्य को देख के तो ऐसा नहीं लगता। मैं कहता मनुष्य को देखता कौन है, मनुष्य को देखोगे तो कहां आशा है। तुलसीदास ने बड़ी सुंदर बात कही है, यहीं आपके हमारे वाराणसी के ही हैं तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, राम सु स्वामी को सेवक मोसो, यदि आपकी कृपा को देखूं तो कोई सीमा नहीं है आशा की, और यदि मैं स्वयं को देखूं कुसेवक मोसो तो कोई आशा नहीं है। इतना ही अंतर है। अगर इस सृष्टि के बीज को देखें कि हम सब के अंदर दिव्यता का बीज है जो लॉजिकल है, यदि ओरिजिन, उसके कई लॉजिक आ सकते हैं जिसको अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, कि देर इज अ डिवाइन ट्रूथ, और इसका एक सिंपल लॉजिक मैं अभी दे दूं, क्योंकि लॉजिकल एज है, हम सबके अंदर क्या दिव्यता की, दिव्यता शब्द अगर नहीं भी, तो अभी बात हुई ना किस चीज की चाह है, अगर हम सर्वे करें पूरे संसार में इन रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन, जेंडर, क्वालिफिकेशन, लिटरेसी इत्यादि, हम अगर सर्वे करें और पूछें शांति चाहिए या अशांति, आनंद चाहिए या दुख चाहिए, ज्ञान चाहिए या अज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए या कलह क्लेश चाहिए, क्या लगता है उत्तर क्या होगा, दो होंगे, नहीं होंगे ना, होंगे क्या, कोई कहेगा मुझे कलह क्लेश चाहिए, ये और बात है कि रोज कलह क्लेश करेंगे, शांति के लिए अशांति पैदा करेंगे लेकिन स्वप्न तो वही है ना, ये कैसे, ये स्वप्न है जो मरता नहीं है, कभी सोचा है जीवन में कुछ भी हो जाए स्वप्न ये चलता रहता है, और इस स्वप्न के कारण ही हम दुखी भी होते हैं, क्यों, क्योंकि जब जीवन में ये नहीं मिलता तो हमको दुख होता है, लेकिन शायद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम मार्ग नहीं जानते, शायद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम दूसरी दिशा में दरवाजा खोज रहे हैं, कोई दशाश्वमेध घाट मोड़ने की जगह दूसरी दिशा में चलता चला जाए, चलता चला जाए, चलता चला जाए, कहे भैया गंगा तो होती नहीं, तो किसकी गलती है, चलने वाले की या गंगा जी की, यही हमारी अवस्था है। हमारी एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि तुमको सुख चाहिए तो खूब धन इकट्ठा कर लो। और ये इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक फ्रेज है, गिविंग अ लाई। कई बार लोग बच्चे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, और पेरेंट्स कई बार कहते हैं बच्चा मेरा शादी नहीं करना चाहता, विवाह नहीं करना चाहती, और ये वो सब पूछते हैं। तो मैं अलग से पेरेंट्स से प्रश्न करता हूँ, आप खुश हो आपका जीवन? विवाहित तो हो लेकिन खुश हो? पहले आप खुद तो हार्मनी क्रिएट कर लो। आप उनको ऐसी सलाह दे रहे हो जिसका आपको खुद नहीं मालूम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह एक बुरी चीज है, बात बुरी अच्छी की नहीं है। आप खुद भटके हुए हो, आप मार्ग बच्चे को लग रहा है आपको कि विवाह कर लेगा तो खुश हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो खुश हो जाएगा। इन सब चीज की आवश्यकता है, अपनी अपनी जगह, लेकिन ये जीवन का अंत नहीं है। ये जो बता रहे थे बड़ी सुंदर ढंग से सर अखिलेश जी, कि ये बुर्जो आइडियल की मेंटालिटी हमारे अंदर कि बस ये हो जाए, तो फिर इसका शिक्षा के वही तीन आधार हैं जो मानव जीवन के तीन आधार हैं। और अगर हम मनुष्य को देखें अपनी संपूर्णता में, समग्र शिक्षा कहा गया, तो समग्रता क्या है हमारी? एक है हमारा शरीर, ये आवश्यक है, ये नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ये आधार है। किसी पेड़ को आप हवा में नहीं उगा सकते, हालांकि आजकल एक विज्ञान है हाइड्रोपोनिक्स, सुना है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मतलब जल से तत्व डाल करके प्लांट ग्रो कर रहे हैं, एक नई विधा आई है। लेकिन आपको ठोस धरती आधार है, शरीर माध्यम अपि खलु धर्म साधनम। ये धर्म कुछ भी आप करेंगे जीवन में, ईश्वर प्राप्ति भी शरीर के बेसिस पर करेंगे। क्या शिक्षा में इस पर समुचित ध्यान दिया जाता है? शरीर की देखरेख कैसे करनी है, इसको सशक्त कैसे करना है? यहां बात केवल व्यायाम या जिम की बात नहीं हो रही है, इतने अंग प्रत्यंग ये सबकी एक्सरसाइजेस, क्या ब्रेन की एक्सरसाइजेस होती है? होती है, बिल्कुल होती है। जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं जो हमको नहीं समझ आ रही है, आप प्रयास करते हैं तो आप ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ब्रेन इनफैक्ट एजुकेशन में एक बड़ी अद्भुत बात यह होती है कि आप ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं बिना जाने अनजाने, तो ब्रेन एक प्रकार से डेवलप होता है। तो हर चीज की ये शरीर एक बेसिस है, इसका एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली नेग्लेक्टेड है, फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल नहीं। बच्चे आ रहे हैं बस क्लासरूम एजुकेशन चल रही है। दूसरा हमारे अंदर प्राण तत्व है, ऊर्जा है। प्राण तत्व है ना, ऊर्जा कहां से मिलती है? तो कहां कहां से ऊर्जा मिलती है? लेट्स हियर। भोजन से, श्वास से, ये दो तो सभी बता देते हैं। जल से भी ऊर्जा मिलती है, और जल को आप प्यार से पिएंगे तो और अच्छी ऊर्जा मिलेगी। जल बहुत सेंसिटिव होते हैं, आपकी अपनी ऊर्जा से आप संबंध जोड़ सकते हैं, इस पर रिसर्च हुई है। तो जब हम लोग के यहाँ वो क्या है सिस्टम, पानी डाल के हाथ में लेके हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मार्पण करते हैं। ये केवल एक रीति रिवाज नहीं है, जल के अंदर जल को आप चार्ज कर सकते हैं। ऑरोविल में डायनामाइज ड्रिंकिंग वाटर बनता है, और एक्चुअल रिसर्च हुई है कि जल रिस्पॉन्ड करता है, जल से ऊर्जा मिलती है। कई बार जब बहुत टायर्ड हो रहे होगे ना, कुछ नहीं है तो जल पी लो, देखो कितना फर्क पड़ेगा। और किस माध्यम से ऊर्जा मिलती है? बातचीत से मिलती है ना, बड़ी मिक्स्ड ऊर्जा आती है। कोई कोई लोगों से बात करके थकान महसूस होती है, कहीं कहीं आती है। विचारों से ऊर्जा अनुभव किए ना, आपको भूख लग रही होगी लेकिन अचानक आप अपने विचारों की दुनिया में आप भूल जाते हो कि मुझे भोजन ग्रहण करना था, होता है ना ऐसा। उसी प्रकार से विचारों के परे भी एक ऊर्जा का क्षेत्र है, भावनाओं से ऊर्जा मिलती है। लोग जब भावनाओं के बहुत प्रचंड वेग में होते हैं तो खाना पीना भूल जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रेम का रोग हो गया, खा नहीं रहा पी नहीं रहा ठीक से, कहते हैं ना क्योंकि आपको ऊर्जा का एक दूसरा स्रोत खुला हुआ है। अब देखिए, कभी ऐसा सोचा था कि इतनी सारी ऊर्जा की हमारे इसमें कुछ अच्छी हैं, कुछ ऊर्जाएं बड़ी जैसे कोल इंजन की तरह हैं, कोयले से तो जो धुआं बहुत फेंकती हैं, और कुछ ऐसी ऊर्जाएं जो क्लीन एनर्जी है, आध्यात्मिक क्षेत्र से जो ऊर्जा आती है ध्यान करके, वो क्लीन एनर्जी, क्लीनेस्ट एनर्जी है, प्योरेस्ट एनर्जी है। तो ये ऊर्जा को रिफाइन करना, ये भी एक शिक्षा का अंग होना चाहिए कि हम अपनी ऊर्जाओं को कैसे रिफाइन करें। कई लोगों को थकान महसूस होती है शाम तक, ये हर बात में थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप शायद क्लीन ऊर्जा नहीं ले रहे, और क्लीन ऊर्जा के कई कारण होते हैं। हो सकता है घर के वातावरण में बहुत ही, जिसको आजकल कहते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, कभी कभी सिंपली बिकॉज आपने घर को ठीक से व्यवस्था में नहीं रखा है, कमरे को, दीवारों के रंग कुछ और है, यहां कुछ और है, किताबें पिकी हुई है, ट्रस्ट मी कि आपकी ऊर्जा समाप्त होगी। इट विल बी एटमॉस्फियर ऑफ बहुत ही एक नेगेटिव। जहां डिसऑर्डर है वहां दानव दनुज हैं, दिति की संतान, दैत्य, ये क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लीजिए। एक चीज यहां फिकी हुई है, दूसरी चीज वहां है, जैसे मानो सब दूसरे से, एक दूसरे से तालमेल ना हो। देखा है ना, घर को दो, कमरे को दो प्रकार से आप रख सकते हो, एक जहां एक चीजें ऐसे बिखरी हुई हैं जैसे एक का दूसरे से कोई लेना देना ना हो, और एक होती है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अनुभव किया है इसको? और रंगों के साथ भी आप ऐसे कि पूरा कमरा एक यूनिट लगता है जिसमें अलग अलग, विद्या वास्तव में इसी को कहते हैं, जो एकत्व के आधार पर अनेकत्व को देखना, दैट इज विद्या। और कई बार जब हम लोग ये नहीं कर पाते हैं तो हम ड्रेन्ड फील करते हैं, जो हमको समझ नहीं आता कि हम ड्रेन्ड क्यों फील कर रहे हैं। तो प्राण की ऊर्जा को संयमित करना, संचित करना, सुंदर बनाना, रिफाइन करना, संगीत के द्वारा, कविता के द्वारा। कई बार लोग सोचते हैं अरे कविताओं की क्या फायदा, कविताओं से क्या, थोड़ी कोई जॉब मिलेगा, कविताओं से जॉब मिले ना मिले, जॉब भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह नहीं है, जॉब मिलेगा, धन मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर एक काव्य बोध नहीं है तो सौंदर्य बोध नहीं है, अगर आपके अंदर संगीत का बोध नहीं है तो सौंदर्य बोध नहीं है। शेरविन देख जगह लिखते हैं कि बिटवीन देम आर्ट, म्यूजिक एंड पोएट्री आर ए परफेक्ट एजुकेशन फॉर द सोल। रिफाइंड होता है हमारा व्यक्तित्व। चरित्र केवल ये नहीं कि ये करा वो नहीं करा, चरित्र ये है कि जो करा सौंदर्य से करा। एक ही चीज है, एक है कि आप पहले किसी को पानी दे रहे हैं, आपने उठाया लो, एक होता है बोतल फेंक दी ले लो, एक होता है रख दी ले लेना, एक होता है आप उसको अच्छे से देते हैं, है ना, सौंदर्य बोध। इससे फायदा किसका हो रहा है? लाभ हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर सौंदर्य बोध डेवलप हो रहा है, और ये सौंदर्य बोध बहुत आवश्यक है प्राण तत्व को सुंदर बनाने के लिए। वाणी में सौंदर्य, कृत्य में सौंदर्य, भाव में सौंदर्य, विचारों में सौंदर्य। क्या फायदा कि हम बाहर से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अंदर में हमने अंधकार से बड़े वो कैलकुलेटेड चीज चल रही है अंदर में। और ये देखिए, मनुष्य ने इस खेल को कितना परफेक्ट किया हुआ है, यहां तक कि आजकल लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अगर कोई बहुत स्माइलिंग कर रहा है तो, अक्सर लोग वो गीत है ना कि ये क्या गम है जिसको छिपा रहे हो जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्माइल शुड बी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सोल। छोटी सी चीज है, मुस्कुराते हम सब हैं। फिर कुछ लोग हैं जो केवल एक झूठी मुस्कान लेके, हाँ ये बहुत प्रसन्नता हुई, कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, दुखी हो रहे हैं, आइए आपके आने से बहुत प्रसन्नता हो। देखिए कितनी झूठ की दुनिया में हम जीने लगते हैं, और जब झूठ की दुनिया में जीने लगते हैं तो क्या होता है? इसी को तो कहा गया सत्यमेव जयते, जो कहा गया ये इस सेंस में है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य से राह खुलती है। वो कौन सा सत्य? हृदय की जब मुस्कान हो, सच्ची हो, जब अभिव्यक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए कि वाणी में कुछ और है और मन में है कुछ और, तो अंदर में भी डिसऑर्डर। दैत्य की संतान, दैत्य दिति की संतान एक्टिव है, अगर अंदर में डिसऑर्डर है, मन कुछ सोच रहा है, भाव कहीं और हैं, और संकल्प, तो इनको जोड़ने का काम, ये सब शिक्षा का काम है। होता है नहीं होता ना? कहीं नहीं होता। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। घर वाले छोड़ देते हैं शिक्षकों पर, शिक्षक छोड़ देते हैं घर वालों पर, और बेचारा बच्चा बीच में है, उसको तो पता ही नहीं है क्या अभी। तो ये दूसरा प्राण ऊर्जा, बहुत इस पर काम किया जा सकता है, बहुत बड़ा विषय है, वाइटल एजुकेशन। फिर मन, विचार आते हैं या हम सोचते हैं, बताइए। थोड़ा थोड़ा मिक्स दोनों होना ये चाहिए कि हम सोचें, लेकिन होता क्या है, विचार आते हैं और हम उसमें बह जाते हैं। एक विचार आया, अरे चलो वहां चाट पकौड़ी खाने चलो 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 चलो। किसी ने कुछ कहा, हम विचारों के अधीन हैं, होना इसके बिल्कुल विपरीत चाहिए, विचार हमारे अधीन होना चाहिए। क्या ये संभव है? योग अध्यात्म कहता है बिल्कुल संभव है। ये संभव है कि हम विचारों पर ना केवल पूरा नियंत्रण रख सकें, हम विचारों को चाहें तो फैक्ट्री को बंद कर सकें, अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, अभी मैं बिल्कुल एक विचार शून्य अवस्था में प्रवेश करना चाहता हूं, ये होना चाहिए और ये संभव है। और कितना अच्छा होगा ना, कितने परेशान रहते ना हम लोग विचारों से, कब आ रहे हैं, रात के समय एग्जाम्स के विचार आ रहे हैं ना, उस समय एग्जाम दे रहे हो आप, बल्कि आप सोओगे नहीं, अगले दिन कितनी परेशानी होगी क्योंकि सो नहीं पाए। अगर कोई ऐसा बटन होता, सोचते ना कभी कोई बटन होता जिसको दबा देते हम विचारों को शांत कर देते, वो बटन है हमारे पास, हमें इसका परिचय नहीं कराया जाता है। बटन है, हम अपने को स्वयं प्रकृति से अलग होके देख सकते हैं विचारों को, उसको शांत करना सीख सकते हैं। और कौन से विचार चाहिए, हमारे वेद पता है क्या कहते हैं, विचारों के कितने स्रोत हैं, कितने लेवल्स है केवल विचारों के, विचारों के भी लेवल्स होते हैं, सुने ही नहीं था ये, कितने लेवल्स होते हैं। अगर आप विचारों को केवल एनालाइज करें तो कैसे कैसे विचार आते हैं, 80% आते हैं भोजन के। पहले ये होता था, हाँ जी आज घर में क्या बनेगा, नाश्ता क्या बनेगा, क्या बना रही हो, पोहा बन रहा है या पूरी सब्जी बन रही है, ये अच्छा वो सब हो गया, उसके बाद आज दोपहर को क्या बनने वाला है, फिर रात को क्या है, व्रत के दिन भी पूरे दिन ये चल रहा है, व्रत का खाना तो बहुत टेस्टी होता है ना, पूरे दिन आलू के दाम कितने हैं, मटर के कितने हैं, टमाटर के कितने हैं, बुराई नहीं है इसमें, लेकिन पूरा दिमाग अगर आलू मटर टमाटर बैगन से भरा हो तो क्या होगा। तो ये विचार आप देख, दूसरे कैसे विचार होते हैं कॉमन, अरे आज बहुत गर्मी है, अरे बड़ी बड़ी ठंड हो रही है भाई, अरे ठंड आपके सोचने से तो कम नहीं होगी, बहुत ठंड हो रही है तो स्वेटर पहन लीजिए, परेशान मत होइए। तो ये सारी चीजें फिर दूसरे के बारे में हर समय, वो ऐसा है ऐसा है, हम कैसे इसको, तो हम सोच ही नहीं रहे, होते हैं ना, बड़ा मजा आता है परनिंदा में, ए और बी मिलके सी की निंदा करते हैं, बी और सी मिलके ए की निंदा करते हैं, और ए और सी मिलके बी की निंदा करते हैं, और तीनों सोच रहे हैं कि हमको पता नहीं है, तो कैसे कैसे विचार हैं। लेकिन विचारों के 9 या 10 स्तर होते हैं, विचार एक यान की तरह है जो हमको अपने मन की भूमि से उठाकर बहुत ऊपर तक ले जा सकता है, ऐसे विचार हैं जो विस्फोट पैदा कर सकते हैं हमारे जीवन में और संसार में समाज में। यदि हम विचारों को नियंत्रित करना, उनको संयमित करना, उनको दिशा देना सीख लें, तो ये तो 3 प्रकार की शिक्षा हो गई, फिजिकल वाइटल मेंटल। इसके परे भी कोई शिक्षा होती है, बहुत सारे सृष्टि के ऐसे नियम है जिनको हम नहीं जानते, इनको जानना चाहिए। आजकल ये किताबें निकल रही हैं इन पर कि चीजें कैसे ऑपरेट करती हैं, इसको क्या कहा गया है कि कोई चीजें उसके पीछे एक विधान है कैसे ऑपरेट करती है। यानी लोगों से मिलके बाजार में जाके कभी अनुभव किया है कि कुछ लेने का मन नहीं था, अचानक मन करने लगा लेने का, विंडो शॉपिंग करते करते आप अपना पर्स गंवा बैठे, तो ये जो होती है ये सृष्टि के जो कुछ आधारभूत नियम है, विधान है, उनको धर्म कहा गया है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, हर चीज का अपना एक धर्म है, उसको जानना ये आवश्यक है, नहीं तो हम जीवन में मूर्ख बनते रहेंगे। मानवीय संबंधों में भी धर्म होता है, बच्चे का एक धर्म होता है, क्षत्रिय का एक, युद्ध योद्धा का एक अलग धर्म होता है, एक जो विद्या अर्जन कर रहा है उसका अपना धर्म होता है। तो ये जो धर्म है कि चीजें, हर चीज के पीछे एक विधान है जो उसको बड़े सुंदर ढंग से आगे ले जाएगा। एक शब्द है बहुत सुंदर जो शिक्षकों पर, जो विद्यार्थी उन पर तो बहुत उपयुक्त होता है, वह है स्वधर्म। गीता तो यहां तक कह देती है स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावया। तो कोई बता सकता है कि उसका स्वधर्म क्या है? कितने लोग हैं जो एकदम मैं जानती हूं मेरा सुधर्म क्या है। तो सुधर्म नहीं पता तो हमको जीवन में दिशा नहीं होगी कि हमको कहां जाना है, किधर जाना है, क्यों जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, क्या बनना है, कैसा। ये सब हमारे ही अंदर इनबिल्ट प्रोग्रामिंग के रूप में ईश्वर ने हमको गिफ्ट के रूप में दिया है। यदि आप सुधर्म जान जाएंगे तो जीवन बहुत सुंदर रहेगा। तो उस सुधर्म को जानना, और इसके आगे दो और शिक्षाएं हैं जिनकी बात ही नहीं होती है हमारे हमारे, चाहे वो शिक्षण हो किसी भी प्रकार का। एक वो कि हमारी असली पहचान क्या है। तो एक पहचान है जो हमको जन्म से मिलती है, फिजिकल बॉडी, माता पिता है, उनसे हमको पहचान मिलती है, वो एक पहचान है। एक पहचान है जो आपको अपने कर्म से मिलती है, प्रोफेशन होता है आपका, कैसे हो, अच्छे बुरे, ये पहचान मिलती है। लेकिन ये दोनों पहचानें हमारी एक जीवन तक सीमित हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि हमारी एक और पहचान है जो इस देह के जाने के बाद भी चलती है, जो बार बार जन्म लेती है। तो वो पहचान क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके अंदर अनेकों जन्मों के परतें, अनुभव अंदर में समाये हुए हैं, जिसको कहा जाता है सोल। सोल शब्द सुना है ना? कितने लोग ये मानते हैं कि वो घोस्ट और सोल एक जैसा होता है, आत्मा? हाँ, पिक्चरों में यही दिखाते हैं ना, आत्मा का घर। आत्मा और भूत का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर के भी रिश्तेदार नहीं है। आत्मा तो सुंदर दिव्य का अंश है हमारे अंदर, श्री कृष्ण का अंश है। यही श्री कृष्ण कहते हैं ना, ममेव अंश, वो अंश है। इसके बारे में हमको कुछ नहीं बताया जाता, मतलब हम अपने आप से अपरिचित हैं। अब देखिए कितना डिफरेंस मिल रहेगा। अगर आपको ये पहचान मिल जाए, केवल एक मान्यता के आधार पर नहीं, हालांकि मान्यता पर भी ये बहुत डिपेंड करता है, मतलब बहुत चेंज कर देता है हमारे जीवन को। मेरे लाइफ का एक रियल एग्जाम्पल है कि एक ट्रक में हम लोग नया नया, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की थी, एयरफोर्स में था, तो हम लोग जा रहे थे और अचानक कुछ वो होते ना अमीरों के बिगड़े हुए लड़के, वो पीछे से हॉर्न दे रहे हैं, रास्ता नहीं है, वो नहीं दे पा रहा था, तो इन्होंने किनारे से गाड़ी ले जाके सामने रोक दी। और फिर हम लोग उतरे, क्या बात है, कहते हैं तुम रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो? हमने कहा यहाँ जगह नहीं है। तो व्यक्ति कहता है जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा कौन हो तुम? उसने कहा मेरे पिताजी हैं। मैंने कहा उससे क्या लेना देना, तुम कौन हो? तो बहुत गुस्सा हो गया। मैंने कहा तुम्हारे पिता का परिचय मैं नहीं पूछ रहा हूं, हम सबका तो परिचय है, मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऐसे हूं, इनका सबका परिचय, तुम्हारा परिचय क्या है गाड़ी चलाने के अलावा? लेकिन इसके भी परे हमारा एक परिचय है। सोचिए अगर हम इस परिचय को लेकर साक्षात हो जाए हमारे अंदर कि हम मां जगदम्बा की संतान है, अगर सच में ये परिचय हो जाए, सच में आप एक बात कहिए, आपको भय लगेगा क्या? कहीं भय लग सकता है क्या? जगन माता की आदि शक्ति की संतान को क्या कहीं भी किसी प्रकार का भय सता सकता है? ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पहचान को हम पा सकते हैं। और चैत्य जो साइकिक एजुकेशन का यही प्रयोजन है कि हम अपनी सच्ची पहचान को पाए। अब उसका प्रोसेस, अगेन मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बहुत बड़ा विषय है। और अंत में जिसको माता जी कहती हैं स्पिरिचुअल एंड सुप्रामेंटल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन क्या है? स्पिरिचुअल एजुकेशन यानी मन के परे चेतना के कई आयाम हैं। जो माइंड की भी एजुकेशन होती है वो ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन की होती है, पता है ना, ये दो साइड। इस पर एक बड़ा फेमस जोक है, देयर आर टू साइड्स ऑफ द ब्रेन, द लेफ्ट एंड द राइट। द लेफ्ट हैज नथिंग राइट इन इट, द राइट हैज नथिंग लेफ्ट इन इट। मनन करना, द लेफ्ट हैज नथिंग राइट इन इट एंड द राइट हैज नथिंग लेफ्ट इन इट। तो ये बाई तरफ की जो फैकल्टीज है हमारी सारी, एनालिसिस, हर चीज को काट के देखती हैं, हर चीज को काट के देखना अविद्या का, ये इग्नोरेंस का मतलब है, पार्शियल नॉलेज है, आपने चीजों को अलग अलग करके देखा। और जो राइट ब्रेन है वो होलिस्टिकली समग्रता में चीजों को देखती है, और इन दोनों को जोड़ना ये आवश्यक है। विद्यांच अविद्यांच यस्त द्वेदो भयम सह। आप किसी पार्ट को होल से कनेक्ट करके नहीं देखते हो तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम। केवल अलग अलग करके देख रहे हो, खंड करके, तो दैट इज नॉट एनफ, वो संपूर्ण समग्र सत्य नहीं है। तो जैसे जैसे मन की भूमि में ये दोनों प्रकार की साइड्स हैं जिनका डेवलपमेंट आवश्यक है। और मन के परे, अभी तक हम यही समझते ना, तार्किक मन सबसे ऊपर है, किंतु इंट्यूशन होती है क्या? इंस्पिरेशन, माँ सरस्वती की हम उपासना करते हैं, होती है ना? रेवलेशन, अचानक अंदर में एक आहा फीलिंग आती है, अरे आप जान गए, जैसे एक जानने की, एक जैसे एक बिजली कौंधी, कभी कभी होती, बड़ी रेयर। अगर ये चीजें जीवन में एक नॉर्मल नेचुरल हो जाएं, तो जीवन कितना सरल और सहज हो जाएगा। आप केवल एक क्षण को सोचें, अगर इंट्यूटिव फैकल्टी और इंस्पिरेशन की फैकल्टी काम करने लगे, तो सबसे पहले तो ये लाभ होगा कि आपको इतनी पढ़ाई लिखाई करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां ब्रह्म ज्ञान को यही कहा गया, ये केवल कहने के लिए नहीं है, यस्मिन विज्ञाते विज्ञाति सर्वम, इसीलिए तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन बना था ब्रह्म ज्ञान के आधार पर। जड़ तत्व को आप ये नहीं करते हो कि ये जड़ है, वो आत्म तत्व है, नहीं। अभी हम जड़ की दृष्टि से आत्मा को देखते हैं, यहां रिवर्स है। आत्म तत्व जड़ को कैंसिल नहीं करता, उसको फुलफिल करता है और सुंदर ढंग से उसका उपयोग करता है। वो ये नहीं कि ये तो बेकार चीज है, हे दृष्टि है, धन है, इसको तो फेंक दो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नहीं। वो शस्त्र का, धन का, घर का, हर चीज का को अब वो आत्मा का एक उपहार बनाएगा या यंत्र बनाएगा। ये डिफरेंस है रिवर्स करने की। तो जैसे जैसे हम चेतना की स्तर में, मन के परे और भी कई फैकल्टीज हैं जो जागृत होती हैं, जिनको वेदों में कहा गया इलामही, सरस्वती, भारती, इनके ये देवियों के नाम हैं जो फैकल्टीज हैं आपके मन के परे की, जो अगर जागृत हो जाएं तो जीवन बहुत सुंदर, सरल, सहज, स्वाभाविक हो जाता है। और इन सब के परे है सुपर माइंड, जो कि सुपर माइंड शब्द यूज किया। सुपर माइंड क्या है? सुपर माइंड वास्तव में, यदि भगवान कैसे सोचते होंगे, ऐसे हम लोग की तरह तो नहीं सोचते होंगे, क्योंकि हमारे विचार तो बड़े सीमित होते हैं, एक समय हम एक का सोच सकते हैं, है ना? अगर मान लीजिए आपका मन ऐसा कैपेबल हो जाए कि एक समय, एक साथ, एक क्षण के लिए बस सोचिए, एक साथ हर किसी के विचार जो अलग अलग हैं उनको जान सके और उन्हीं के अनुसार रिस्पॉन्ड कर सके, कल्पना कीजिए। सबके अंदर अलग अलग विचार होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति के अंदर ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि एक साथ, एक ही समय पर वो हर किसी के भिन्न भिन्नताओं को जानता है और उसको अकाउंट में लेकर के रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी वो केवल एक जैसा क्लिक ऑल ये नहीं करेगा, तो उसको सुपर माइंड कहा गया। इसको एक तरह से हम कह सकते हैं द माइंड ऑफ द क्रिएटर, और कुछ नहीं इसको शब्द में नहीं, माइंड ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर भगवान हर किसी के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, कितनी सुंदर बात है। अर्जुन को वो कहेंगे युद्ध लड़, बुद्ध को कहेंगे तो निर्वाण का मार्ग ढूंढ, एक जैसा नहीं कहेंगे। इसलिए भारतवर्ष में एकता में अनेकता, विविधता, ये दर्शन है। क्यों? क्योंकि कोई एक भूमि है जहां ये दोनों एक हो जाते हैं। हम लोग कैसे एकता को क्रिएट करते हैं? यूनिफॉर्मिटी के द्वारा। सब एक जैसा सोचें, सब के अंदर एक जैसा भाव हो तो दुनिया सुंदर हो जाएगी। सुंदर होगी या मोनोटोनस होगी? एक जैसे दिखें, एक जैसे सोचें। सोचिए एक मिनट को, आपको कुछ बात करने को नहीं रहेगा, कितना बोरिंग होगा। तो एकता में अनेकता, विविधता के साथ एकत्व को पकड़ना, वो भूमि सुपर माइंड की है, जहां एक भी है, अनेक भी है। और अनेक ऐसे नहीं कि बस हैं, किंतु हर किसी की अपनी जो गति है, उनका जो लक्ष्य है, उनके अंदर जो कुछ चल रहा है, वो सब का ज्ञान है, संज्ञान है, और उसके अनुसार एक्ट हो रहा है। कभी भी आप देखिए कि दिव्यता कभी ऐसे नहीं एक्ट करती है कि हर किसी को एक तरह से। श्री कृष्ण के एक आचरण को देख लीजिए। तो ये सारी शिक्षा का एक समग्र शिक्षा का विषय है। इसको तो अभी हम लोगों ने सोचना भी नहीं शुरू किया है। एक आई है, राष्ट्र शिक्षा का एक प्रारंभ हुआ है, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है जिसमें इस हमारा समुचित विकास, अभी तो केवल हमको एक जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, थोड़ी बहुत हमारे अंदर विधाएं डेवलप हो जाएं, फैकल्टी इसके डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई है, इमोशंस को कैसे हैंडल करें इसकी बात ही नहीं हुई है, धन का उपयोग कैसे करें, धन तो कमा लिया, उपयोग कैसे करें, पैशन जो इन मनुष्य के अंदर आते हैं, इस ऊर्जा को नियंत्रित कैसे करें, यही पैशन आपको ना जाने क्या बना सकते हैं, और यही पैशन उसी वही अग्नि घर को जला सकती है। शरीर की शिक्षा, हमारे अंदर हम अपनी सच्ची पहचान कैसे प्राप्त करें, मन के परे जो लेयर्स हैं, हम अपने मन को माइंड ऑफ द क्रिएटर, सुपर माइंड एक शब्द में, माइंड ऑफ द क्रिएटर के साथ कैसे एक कर लें, ये सब संभावनाएं मनुष्य के अंदर हैं। तो ये हमको विचार त्याग देना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी एक रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट के बाद अगर छोड़ेंगे इन चीजों को तो फिर तो रिटायरमेंट के बाद एक ही प्लान होता है, कौन सी शमशान भूमि, हरिश्चंद्र घाट जाऊं या मणिकर्णिका घाट जाऊं। स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन को बदलने की एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी देन है, एक चेतना का स्तर है जो पूरे जीवन को बदलता है, और उसका प्रारंभ बचपन में करना चाहिए और उसका प्रारंभ जीवन तक चलना चाहिए। ये वो शिक्षा है जो कहीं समाप्त नहीं होती है। तो ये इन ए शॉर्ट टाइम आई होप, हाँ तो यहीं पर मैं पॉज बटन को क्लिक करूँगा, क्योंकि ये एक एंडलेस विषय है, पर आप लोगों को कभी कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, और जैसा मैडम बता रही थी एक आस्क अलोकदा, बहुत सिंपल है वो, आस्क अलोकदा एक वेबसाइट है जिस पर आप प्रश्नों को भेज सकते हैं, और औरों पे रेगुलर रूप से मेरे आते हैं टॉक्स, लेकिन आप आस्क अलोकदा पे कोई भी प्रश्न, उसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, ये सेवा है, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ अवश्य,
कुछ पूछना है, कुछ मन में सवाल है पूछिए।
हाँ किस तरह से, हाँ तो बैठ जाओ, बहुत तरह से समझ सकते हैं, लेकिन साधारण तरीके जिसे हम कनेक्ट करें, आपके उच्चतम स्वप्न क्या है जिसकी बात हमने की, परिपूर्ण जीवन, ये स्वप्न कहां से आए हैं, ये स्वप्न ही हमारी दिव्यता की ओर संकेत कर रहे हैं। जीवन में मानवीय संबंधों में कौन सा प्रेम पसंद होगा, जिसमें परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो, परफेक्ट परस्परता हो, या जिसमें कलह क्लेश हो, जिसमें सामंजस्य हो, या जिसमें कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन हो, उत्तर मिल जाएगा। कैसा आनंद हमको जीवन में, कैसा सुख चाहिए, वो जो आज है कल क्षय हो जाए वो वाला, या परमानेंट वाला। नचिकेता यम की जो बात हो रही थी यही प्रश्न है, ये नहीं कि ये चीजें गलत हैं, ये हमको नहीं सुख, हमको जो भौतिक सुख है वो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये टेम्पररी है और ये परमानेंट है। तो परमानेंट कोई भी चीज के आप परमानेंट पर अगर पहुंच जाओगे तो वो दिव्यता है, और कैसे प्राप्त करोगे इसका भी बहुत सरल उपाय है। जिन चीजों के बारे में, जिनमें मन रमेगा वही अंत में प्राप्त होगा। जो व्यक्ति केवल फेल्यूर की बात सोचता रहता है, अंत में जीवन उसको जस्टिफाई करता है, हम इसको साइकोलॉजी में कहते हैं नेगेटिव रोल प्लेइंग। पेरेंट्स अगर बोलते रहे तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, अंत में हम स्वयं को मानते रहे कि हम व्यर्थ हैं, बेकार हैं। और अगर हम स्वयं में ये माने कि नहीं हमारे अंदर दिव्यता है, तो हम धीरे धीरे वो दिव्यता का बीज हमारे अंदर से निकलने लगता है। दूसरा, पोषण की आवश्यकता होती है, कोई भी बीज है उसको पोषण करते हैं, तो दिव्यता का बीज कैसे पोषित होता है, सत्संग से पोषित होता है। सत्संग का सिंपल माध्यम क्या है, ऐसी पुस्तकें जो हमारे उस बीज को पोषित करती हैं। मुझे मालूम नहीं अभी क्या चलता है, लेकिन हमें तो बहुत आनंद आता था ये रामायण महाभारत जितनी कहानियां आती थी पौराणिक सब, अब मुझे उस समय नहीं पता था कि ये कोई बीज को पोषित कर रहा है, तो ये पोषित करता है। उपनिषद है, गीता है, कहीं नहीं, कहानियां तो बड़ी सिंपल है, भारतवर्ष तो कितनी कहानियां है ढेरों। तो ये दिव्यता के बीज को पोषित करता है, ऐसे स्थान है जो दिव्यता के बीज को पोषित करते हैं, तो उसको पोषित करना होता है। और ऐसी चीजें जो उस पर जहर का काम करती हैं, पूतना वाला दूध है वो या फॉर्मूला मिल्क हो, तो हमें ये निर्णय करना होता है, चुनाव करना होता है कि हम दिव्यता के बीज को पोषित करें या अदिव्य को पोषित करें, ये हमारे ऊपर है।
और कोई बच्चे?
ठीक है, लेकिन एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा। हाँ बेटे बताओ। हाँ बोलो बच्चे। बहुत सुंदर। देवी देवता इसको बड़े सरल ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है इस पर, और प्रारंभ वो पिक्चर आई थी वैक्सीन वार, तो उसमें आपने सुना होगा ना सदिया सूक्त, लेकिन वो बहुत मिसअंडरस्टूड है। वो कहते हैं प्रारंभ में क्या था उसको देव भी नहीं जानते, न दिन था ना रात था, तो उसको लोग एथीज, लेकिन एथीज्म की बात नहीं है ये। प्रारंभ में न देवी है ना देवता है ना कोई है, वह है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब जैसे ही अंदर में सृष्टि का संकल्प जागता है, तो अब देखो आपके अंदर में एक अवस्था है जब आप बस बैठे हो, किसी ने कहा क्या कर रही हो, बस यूं ही बैठी हो, आपके अंदर अगर भाव जगा कि मुझे कुछ लिखना है, तो क्या क्या चाहिए लिखने के लिए? प्रेरणा, ठीक है, साथ में कलम, कागज या कंप्यूटर है जो भी, फिर कोई लोग होंगे जो इसको संयोजन करेंगे, किताब आए कहीं से, है ना, आएगी ये सारी चीजें, शब्द चाहिए, ग्रामर चाहिए, सारी चीजें अपने अंदर में। तो जैसे ही सृष्टि का प्रारंभ होता है, वैसे ही भगवान के अंदर से, अब भगवान एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, इसका बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं, उस एक के अंदर से प्रकट होते हैं वो प्रमुख, चार प्रमुख शक्तियां जो उन्हीं एक के एस्पेक्ट हैं। क्या एस्पेक्ट है? भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। सत यानी एग्जिस्टेंस, और ये बहुत सिंपल है, इसको लॉजिकली वी कैन अंडरस्टैंड। हर चीज एग्जिस्ट करती है, करती कि नहीं करती, एग्जिस्ट कोई एक लेवल पर करती है, तो सत एग्जिस्टेंस। चित, चित के अंदर दो एस्पेक्ट है, चित तपस, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स। जो चित है वो विष्णु, विस्तार, वो फैलते चले जाते हैं, वो अपनी निद्रा में भी क्रिएट कर रहे हैं, और तपस से शिव फोर्स, और आनंद कृष्ण। ये चार एस्पेक्ट है फंडामेंटल जो ओरिजिन के, और उसके बाद प्रत्येक के अंदर से अनेकों अनेकों मैनेजर्स के रूप में आप समझो, कॉस्मिक मैनेजर्स। शिव के अंदर से रुद्र आ रहे हैं जो महा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, जो यहां धरती पर उतर के जितने भी वार देखते हो, रिवोल्यूशन देखते हो, उन्हीं और इन सबकी शक्तियां भी हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स हैं। तो ये सारी जो पावर्स हैं, एक और श्री कृष्ण है जो आनंद में है, अब वही धीरे धीरे अनेकों अनेकों प्रकार से धरती पर एकदम प्राण तत्व के अंदर भी जो एक आकर्षण है, वो सब वहां से अल्टीमेटली अपना ओरिजिन दिव्यता से ही है। तो जो एक पथ है वो ये है कि हम देवी देवताओं के माध्यम से, वेदों में ये पथ है, हम उनके माध्यम से उस एक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। वो एक सीढ़ी बनी हुई है देवी देवताओं की, ऊपर में चार हैं, तीन कह लो अप टू ईच वन, क्योंकि कृष्ण सबके पीछे खड़े होते हैं, तो ये या चार कह लो, और उनसे अनेकों 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 लैडर, आप कहीं पर भी हो चढ़ते 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 चले जा सकते हो, उसको बहुत विस्तार में भी हम समझ सकते हैं किस लेवल पर है। पहले आदमी प्रेम को क्या समझता है, आकर्षण समझता है, बहुत बाद में प्रेम के शुद्ध स्वरूप को जानता है। तो ये एक सीढ़ी है, फ्रॉम द मोस्ट एनिमल लव टू द मोस्ट डिवाइन लव, ठीक है, और इस सीढ़ी से, ये एक पथ है। लेकिन दूसरा पथ भी है, दूसरा पथ ये है कि चूंकि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सीढ़ी बनी है सृष्टि के लिए, दे आर कॉस्मिक मैनेजर्स, गॉड गॉड गॉडेस, हरेक के आधिपत्य में एक क्षेत्र है, एक विभाग है, लेकिन ये कॉस्मिक मैनेजमेंट के लिए है। ये इस कॉस्मिक मैनेजमेंट में देवताओं के अथक प्रयास से, देवियों के श्रम से, अंत में एक ऐसा प्राणी आया है मनुष्य जिसके अंदर स्वयं स्रोत बसा हुआ है। तो यदि हम चाहें तो हम डायरेक्ट सुप्रीम से कनेक्ट कर सकते हैं, यह भी संभव है। वी नीड नॉट गो थ्रू द गॉड्स एंड गॉडेसेस, दोनों ही प्रोसेस है। लेकिन यदि आपको सृष्टि पर कर्म करने की आवश्यकता है तो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं और उनको जानना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आप कोई भगवान को भी पाके ये नहीं करता है जो हमारी आइडिया है मिरेकल करने लगेगा, जहां जाएगा अरे भीड़ है, भीड़ छट जाएगी सामने से और जो चाहेगा पकवान आ जाएंगे। नो, ही विल नॉट, क्योंकि वो डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। तो आप देखते हैं कि राम जी भी पूजा करते हैं, एक और पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, वो स्वयं भगवान है, लेकिन वो ये माध्यम जो उनको एक्ट करना है क्रिएशन के ऊपर। लेकिन जो भगवान को पा लेता है अपने अंदर डायरेक्टली, चाहे वो देवी देवता के माध्यम से ना गया हो, लेकिन ऑटोमेटिकली जितने देवी देवता हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। आप ऐसे समझो, आप देखो, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ घूम रहे हो, देख लिया ना सबने, जिला अधिकारी ने देख लिया कि इसकी तो फोटो हमने देखी थी, ये तो जा रही थी जेड सिक्योरिटी में। अब क्या होगा जब आप जिला अधिकारी को पता है कि कोई भी बात है इसकी हमको सुन लेनी है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर उस दिव्यता को पा लेता है तो देवी देवता स्वतः ही उसके साथ अलाइंड हो जाते हैं अपने आप। लेकिन जो असुर तत्व हैं वे भी हैं जो नहीं चाहते कि यह संसार दिव्य बने, वे आपके और अधिक प्रचंड रूप से विरुद्ध होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दिव्य। और इसी को देवासुर संग्राम गया कहा गया अमृत तत्व के लिए। वो हम सबके अंदर होता है, हम सबका काम है असुर तत्व को रिजेक्ट करना और दिव्य तत्व को अपने अंदर जागृत करना। क्योंकि असुर तत्व क्या है, वही खंड खंड करके मैं और मेरा, बस मैं ही हूं और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आप सब ने राष्ट्र की सेवा की बात कही थी, मैडम ने मेरे विषय में कही थी, हम सब कर रहे हैं राष्ट्र की सेवा, मैं ये मानता हूं जो भी राष्ट्र से प्रेम करता है। आप सब ने एक स्पॉन्टेनियस ताली बजाई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको राष्ट्र से प्रेम है। आप केवल ये नहीं सोचे मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या फायदा होगा, ये कौन सोचता है, यही तो असुर तत्व है। रावण क्या चाहता है, शिव जी मेरे पास आकर के रहें, मेरे हो जाएं, कोई भी उन तक पहुंचेगा नहीं, मैं क्लेम करूंगा मेरे हैं। तो यहां ये जब बात आती है पृथकत्व की बात, स्वार्थ की बात, स्वार्थ से ही सब असुर तत्व का जन्म होता है। और जो विशालता में जीता है कि नहीं राष्ट्र, राष्ट्र के परे मनुष्यता, मनुष्यता के परे दिव्य, तो वो दिव्यता की ओर मार्ग है। ये दो मार्ग है मनुष्य के सामने, ठीक है, तो उसका चुनाव करना आवश्यक है। तो ये देवी देवता उस हायरार्की में आते हैं, और जैसे जैसे आप हायरार्की में नीचे जाते जाओगे तो वो वहाँ असुर तत्व मिलने लगते हैं। क्योंकि असुर तत्व क्या करते हैं, वो नहीं जानते ऊपर कौन है, वो अपना भाई मुझे दो मेरा कट, फिर मैं आगे की बात करूं। तो ये डिफरेंस है, ठीक, स्पष्ट है। हम लोग यहाँ रुकेंगे, और मेरा ये बस वही कहने वाला था मैं कि जिज्ञासा जरूर रखना, जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो क्या कहूँ, मृत है ऐसा तो नहीं कह सकता, हार्श लगेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य वो है जो प्रश्न करता है, सब किताबें पढ़ने के बाद प्रश्न करता है, अनुत्तरित प्रश्न। मनुष्य वो है जो सब जान के भी फिर प्रश्न करता है, मैं जानना चाहता हूं, और वो नकारता नहीं है बिना, वो नहीं कि भाई मैं जानना। एक होता है कि प्रश्न करने का मतलब मैं नहीं मानता भगवान को, कई बार लोग ऐसे मिलते, मैंने कहा तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुमको पड़ रहा है। तो यहां ये बात नहीं हो रही है प्रश्न का, एक प्रश्न होता है जो केवल शंका का रूप लेता है, यहां शंका की बात नहीं हो रही है, बात जिज्ञासा की हो रही है। शंका ए प्रायरी रिजेक्शन है, मैं मानता हूं भगवान को या मैं नहीं मानता हूं भगवान को, लेकिन जानने की वास्तव में क्या है, हम सोल की बात सुनते, क्या है ये सोल, मैं जानना चाहती हूं, मैं देखना चाहती हूं, मैं पाना चाहती हूं, उसको कहते हैं जिज्ञासा। ये जिज्ञासा ही सच में हर चीज की जननी है, जहां जिज्ञासा नहीं है वहां मृत्यु है। नमस्ते।